तस्मै श्री वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवस्तुते। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। सप्तकञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विषभानुसुते देवि प्रणमामि। हा देवि काकुभरगदगदयाद्यवाचा जाते निपत्तभुवि दण्डवतो अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके तव गणि अङ्गश्यामलिं सदा मधु कृतेन्दीवरम् जड्जञ्जगुदरोचि संविदधतमपट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदर राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायामि। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्य चित्त्वास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायतरालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भुनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतु। दशम स्कंद 44 अध्याय। प्रातः व्रजात व्रजत अविशतस्य सायं गोभीषमं कणयतो अस्य निशम्य वेणुं निर्गम्य तूर्णम् अबला पतिभूरि पुण्या पश्यन्ति सस्मित मुखं तदयावलोकम्। मथुरा की महिलाएं गोपियों के चित्त वृत्ति में अपनी चित्त वृत्ति को मिला दिया, जिसको मैंने कल सवासना अथवा साधारणीकरण बतलाया। उन्नतर जो भजन पद्धति है इसका ये प्रधान अंग है। उन्नत तरह का जो भजन है अनर्थ निवृत्ति के पश्चात संबंध ज्ञान के सहित भगवान का जो भजन होता है रुचि के बाद में आसक्ति आने के बाद में तब इस तरह का भजन संभव है। इसलिए पहले निष्ठा हो, निष्ठा में सब अनर्थ दूर हो जाए और रुचि उत्पन्न हो भगवान की कथा में, भगवान का नाम करने में, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि में रुचि हो जाए साधन में, तो वही परिपक्व होने के बाद में जितना अनर्थ दूर होता जाएगा उतना ही आसक्ति बढ़ती जाएगी। रुचि माने प्रबल रुचि ही आसक्ति कहलाती है, तो उसमें आसक्ति साधन से हटकर, जो रुचि में साधन में आसक्ति थी रुचि थी, अब वो बदल करके जो हमारा साध्य वस्तु है उसमें चली जाए, भजनीय के प्रति, भजन से भजन, भजनीय में पहले रुचि होगी, फिर उसमें आसक्ति होगी और तत्पश्चात भजनीय में। भजनीय कौन? भक्त और भगवान के, भगवान दो, कृष्ण उनके लीला परिकर, दोनों ही भजनीय हैं। बल्कि कृष्ण की अपेक्षा उनके जो परिजन है परिकर, उनका चिंतन ध्यान उनके ही विचारों को हमको ग्रहण करना है, कृष्ण के विचार को नहीं। यहाँ पर मथुरा की जो महिलाएं हैं, गोपियों की स्थिति को वर्णन कर रही हैं, कृष्ण की स्थिति को नहीं। और चाहती हैं कि हम गोपियों जैसी कब सेवा हम प्राप्त करें और उसी के साथ में साधारणीकरण अपने विचारों को किया। बैठी हुई हैं यहाँ पर रंगेश्वर में, रंगस्थल में, यहाँ पर की चारुण और कृष्ण, मुष्टि और बलदेव, ये दोनों युद्ध करने जा रहे हैं, भीड़ रहे हैं। और उसी समय में भाव नेत्र से ये वृंदावन पहुंची, कृष्ण को देखा और उन गोपियों के भावनाओं को देखा और उस भावना में अपने को तन्मय कर दिया। हम लोगों को उसी तरह से करना चाहिए। अभी हमको क्या करना है? गुरु जी के भाव में अपने भावों को अभी समानाधिकरण करना है। जो व्यक्ति अपने गुरु के विचारों को नहीं समझ सकता, उनकी वैसे आदेशों को पालन नहीं करता और उनका हृदय गुरु के हृदय के समान नहीं हो जाता, तो गुरु की सेवा नहीं कर सकता है, तो भगवान की क्या सेवा करेगा? कोटि जन्मों में संभव पर नहीं। इसलिए वैष्णव और गुरु कैसी सेवा कर रहे हैं उसके समान अपने को करना होगा। और तत्पश्चात ये बातें आएंगी, अनर्थ निवृत्ति होने के पश्चात। तो यहाँ पर बैठी हुई और देख रही हैं, कहाँ देख रही हैं? ब्रज में देख रही हैं गोपियों की भावनाओं को और करेंगे हमारा ये कौन सा तप उन्होंने किया जो हम तप करके वैसा भाव लाएंगे। पहले तो ये बतलाया जैसे अपने गृह कार्यों को गोपियाँ कैसे करती हैं। हम लोग अपने जो आश्रम का या घर का काम कैसे करेंगे, अपने भजन के अनुकूल में करके उसे करेंगे, ये नहीं समझेंगे ये घर का काम कर रहे हैं। जैसे अम्बरीश महाराज जी मंदिर में झाड़ू देना, उसकी प्रत्येक सेवा को, अर्चन पूजन झाड़ू देना, ये सब अपने हाथों से करते थे। उसमें भावना कैसी थी? ऐसे भावना लाना पड़ेगा। दूसरी बात, सुख दुख को, सुख दुख समाकृत्वा जया जया जयउ लाभा, ये सबको एक समान समझना पड़ेगा। और श्रीमद् भागवत का यह श्लोक सबसे याद रखना पड़ेगा, तत्तेनुकंपां सुसमिक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतौ विपाकं हृत्वाद् बद्धि विदधन नमस्ते जीवेत जह मुक्ति पदे सुदाय भाक। अपने कर्म के फल से, अच्छे बुरे फलों को जो हम प्राप्त कर रहे हैं उसको अपना सहना कर पड़ेगा। इसमें दूसरा दाई नहीं है, कहीं अपमान हो रहा है, कोई अपमान कर रहा है या कुछ दुख दे रहा है या खूब सम्मान कर रहा है, उसमें कर्म निमित्त है, उसमें उसको शत्रु मानो मत मानो। जा रहे हैं, किसी गाय ने धक्का दे दिया, गिर पड़े, ये किसका दोष है? गाय का दोष है ना हमारा दोष है? अपने कर्मों का दोष है, इसलिए इसको सहना चाहिए अथवा भगवान की कृपा मान करके उसको सहना चाहिए। ये भगवान ने हमको दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया, तब तो भजन कर सकेंगे, अथवा नहीं कर सकते हैं दिन रात समस्या रहेगी, मान अपमान में जलते रहेंगे, भजन क्या करेंगे। तो गोपियां जैसे अपना जीवन निर्वाह करती हुई समस्त कामों को अपने अनुकूल भजन के अनुकूल बना रखा है और कृष्ण की चिंता करती हैं, वैसे हम भी प्रत्येक काम में, प्रत्येक विचार में उन कार्यों को अपने भजन के अनुकूल बना लेना होगा। झाड़ू देना, गोपियां कैसे झाड़ू दे रही और कृष्ण का स्मरण कर रही हैं, हम भी ऐसा कर सकते। एक प्राय हम बोलते हैं या प्रभुपाद के शिष्यों से सुना है, एक आदमी मायापुर में भागवत सुनने के लिए आया, तो वो सुन करके आया कि यहाँ पर व्याकरणाचार्य और भागवत के आचार्य हैं, उनसे हम भागवत सुनेंगे। तो प्रभुपाद के पास में गया और बोला जे उन्हीं का शिष्य था, बोला जैसे मैं पंडित जी, उनका नाम था ना, उनका नाम था ये क्या नाम मुझे याद नहीं, आचार्य महाराज से जो यहाँ पर पहले विशाखा जी के जन्म स्थान कमई करेला में बहुत दिनों तक रहे, संस्कृत के विद्वान आदमी थे, बहुत सुंदर पद्य लिखते थे, तौ स्तुति लिखा है, बहुत कुछ स्तव स्तुति लिखा है। तो उनके पास में मैं भागवत सुनने के लिए आया हूं। प्रभुपाद जी ने कहा भागवत सुनेगा, आचार्य महाराज तो भागवत नहीं जानता है, उसने तो भागवत पढ़ा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं जीवन में, उसने तो अनुस्वार और विसर्ग देखा है, भागवत तो देखा नहीं, भागवत सुनेगा पढ़ेगा कहां, तो जाओ वैष्णव दास जी से भागवत सुनो। वैष्णव दास को तो मैं जानता हूं, वो तो बगीचे में तुलसी लगाता है, बैगन लगाता है, ठाकुर जी की पूजा सेवा में लगता है, वो तो भागवत जानता नहीं है। उन्होंने कहा जैसे वही भागवत पोथी वही है, उसका जीवन भागवत है, जो कुछ करता है सब समय भगवत नाम भगवत चिंतन करते हुए वो करता है, इसलिए वो भागवत यदि पढ़ना है तो भागवत उससे पढ़ो और नहीं तो नास्तिक बनेगा। तो जीवन जिसका जीवन भागवत है उनके विचारों का अनुसरण करना, ये गोपियां क्या है, भागवत गोपियां हैं, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत, ये गोपियों को भागवत मान लो, उनका चरित्र ही भागवत है। गोपियों का चरित्र यदि भागवत से निकाल दिया जाए तो बाकी क्या रहेगा, जीरो हो जाएगा, निर्विशेष ब्रह्म कृष्ण बन जाएंगे ने? इसलिए कृष्ण के चरित्र के अपेक्षा भागवतों का चरित्र, गोपियों का चरित्र, सखाओं का चरित्र, यशोदा मैया का चरित्र, प्रहलाद महाराज जी का, नारद जी का, व्यास जी का, हमारे चैतन्य महाप्रभु के परिकरों का, ये सब पहले जानना पड़ेगा। कैसे भगवान की वो लोग सेवा करते हैं, उसी तरह से उनके गृह कार्यों में भी भगवान का कैसे स्मरण करती हैं गोपियां, इसको बताएं। अब देखो विरह में मिलन में उनकी क्या स्थिति होती है, अपने भाव नेत्र से वृंदावन में पहुंच करके ये देख रहे हैं, कृष्ण गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, प्रातः ब्रजात ब्रजतः आविशतश्च सायं गोभी समं कणयतो अस्य निशम्य वेणुम। ओह ये गोपियां देख रही हैं, बैठी हैं कहां, मथुरा में, कहां कृष्ण और चारुण लड़ रहे हैं, मुष्टिक और बलदेव जी लड़ रहे हैं, रोष से भरे हुए आंखें लाल हैं, और वो ऐसे बजाते हुए ताल ठोक करके और पैंतरे पर चल रहे हैं, और कभी हाथों से धकेल रहे हैं, कभी खींच रहे हैं, कभी कुछ कोई कुछ कर रहे हैं, और उस समय में ये गोपियां भाव नेत्र से वृंदावन में पहुंच गई और देख रही हैं क्या, प्रातः ब्रजात ब्रजतः, प्रातःकाल में आकर के कृष्ण ने कुछ कलेवा किया, कलेवा करने के बाद में वन में जा रहे हैं। नंद बाबा, जसोदा, ब्रज के जात जितने बूढ़े बच्चे सभी लोग पहुंचाने जा रहे हैं। मैया तो छोड़ती नहीं, कृष्ण जा रहे हैं और वो कभी पकड़ लेती है, कभी आंसू से नहला देती है, कहते बेटा तुम वहां से जाकर फिर लौट आना, बहुत हो गया, तुम अब लौट चलो। और ये शपथ दे रहे हैं ये तुम लौट जाओ भैया, बार बार शपथ देने पर भी लौटना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। यदि ये कोई खड़ी भी हो जाती है तो नंद बाबा आगे चलने लगते हैं। नंद बाबा को किसी प्रकार से रोका। उसी समय में पश्यन्ति सस्मित मुखम सदयावलोकय, पश्यन्ति सस्मित मुखम, पश्यन्ति ये गोपियां देख रही हैं नंद बाबा वहां पर हैं या लौट रहे हैं, और कृष्ण की दृष्टि कहाँ है, सदयावलोकम, सदया पूर्वक, दया माने यहाँ पर कृपा, कृपा पूर्वक अवलोकन कर रहे हैं। कहाँ अवलोकन कर रहे हैं, सस्मित मुखम पश्यन्ति गोपियां, जहां पर सस्मित अत्यंत स्मित हास्य से देखती हुई दूर आड़ से कृष्ण के तरफ में देख रही हैं, ये देख रही हैं भाव नेत्र से। ये गोपियां खड़ी हैं कुंजों के द्वार पर, अपने घर के झरोखों से देख रही है, अपने दरवाजे की आड़ से देख रही हैं, कोई अट्टालिका के ऊपर से देख रही हैं। उस समय में कृष्ण को देख करके ये भी मुस्कुरा रही हैं और कृष्ण दयापूर्वक उनके तरफ में देख रहे हैं। उस समय में प्रातः ब्रजात ब्रजतः, ब्रज से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, गोचारण करने के लिए, साथ में गोभी समम, गोभी समम, गोभी माने गैया हैं, उनके साथ में बलदेव भैया हैं, नंद बाबा भी अभी उनको पहुंचाने जा रहे हैं, और हजारों सखा लोग कृष्ण के साथ में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, उनके कृष्ण को शाबाशी दे रहे हुए है ना, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विव्रत वासन कपिशम वै जयंती शिमालम रंध्रान वेणु रणितम गोप वृंदई। वो उनको जय जयकार कृष्ण की, कन्हैया की जय हो, कन्हैया की, ऐसे सब कर रहे हैं और उनको बहुत ही धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं, कृष्ण को पीठ ठोक रहे हैं कोई, और मृदु चरणों से अपने चरण चिन्हों को पृथ्वी पर रखते हुए चले जा रहे हैं धीरे धीरे। जिस समय में गोपियों ने उनके तरफ में मुस्कुरा करके देखा, कृष्ण भी बड़े भावुक होकर के उनकी तरफ देखा, और देखते ही क्या हुआ, बंसी करान निपतितम भ्रष्टंच पीत वसनम ब्रजराज सोनु यस्या कटाक्ष सरघात विमुच्चितस्य तंग राधिका परचरामी कदार। यही कृष्ण ने राधा जी के तरफ में देखा, क्यों ही हाथ से बंसी छूट गई, गिर गई, पीताम्बर जो यहां था वहां पर नीचे लुढ़क गया, मोर मुकुट गिर गया, किस लिए गिर गया, राधा जी को, राधा जी का पैर स्पर्श करने के लिए गिर गया, और कृष्ण मूर्छित होकर के गिरने ही वाले थे, किंतु मधुमंगल जी थे बगल से, उन्होंने ऐसे किया, ये क्या कर रहा, नंद बाबा तुम्हारे पिताजी देखकर के क्या कहेंगे, जरा संभलते जाओ, बड़ी मुश्किल से संभलते हैं। उस समय में कृष्ण को देख करके, गोपियों को देख करके कृष्ण की ऐसी स्थिति होती है, उसका स्मरण करना, यहां युद्ध हो रहा है, कोलाहल हो रहा है, और ये कहां पर क्या कर रही हैं, ध्यानस्थ होकर के समाधि लग गई और वृंदावन के ये दृश्य को देख रही हैं। हम लोग कर सकते हैं, एक से दो आदमी होने पर हरिनाम, यदि वो भी कर रहा है हम भी कर रहे हैं तो वो हरिनाम ही नहीं होगा, कोई दूसरी बात चर्चा कर रहा है तो नहीं होगा, कोई दूसरा काम कर रहे हैं ये नहीं होगा। और गोपियों का देखो तो वहां पर यही कहते हैं इसको सहज समाधि, इनकी मथुरा वासियों की सहज समाधि लग गई। किसमें लग गई? गोपियों में। जो गोपियां कर रही हैं सब इनके हृदय में आ, इसको कहते हैं समानीकरण अथवा सबासना। ऐसा करने की चेष्टा करो तो देखें, एक मिनट के भी लिए हो जाएगा तो जीवन धन्य। को भी समम कणे तो अश निशम वेणुम। और ये तो मिलने का समय, जब जा रहे हैं, जब जा जब चले गए कृष्ण वन में, तो ये गोपियां क्या करती हैं है? गोपियां क्या करती हैं? कहती हैं आंखों का फल तो यही है ये कृष्ण का दर्शन कर, अखण्डवतांग फलम न परम विराम, सबका पशुन अनुबेवयतोर वयस्यी वक्त्रम ब्रजेश सुतो अनुबेनु जुष्टम जैवानि पीतम अनुरक्त। दल के दल एक सर में मिल गई, घर में अब कोई काम नहीं है, घर का काम निपटा दिया है, सभी एक साथ में बैठ रही हैं, कृष्ण गोवर्धन में आ गए हैं और पास के वनों में गोचारण कर रहे हैं। और ये कर रही हैं, जिसने कृष्ण का दर्शन नहीं किया उनकी आंखों बेकार की, मोर पंख की आंख है, उस पर वज्र गिर जाए वो नष्ट हो जाए। इन आंखों की जरूरत क्या यदि कृष्ण को दर्शन नहीं किया? कैसे कृष्ण को दर्शन नहीं किया? गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, बलदेव जी साथ में हैं, गोप लोग सखाए एक वन से दूसरे वन को जा रहे हैं, और वो भी बड़े सतृष्ण नैनों से किसी की ओर में देख रहे हैं, उसमें भी अंत में वही है देख। ऐसे कृष्ण को जिसने वन में चराते जाते हुए नहीं देखा, उनकी आंखों को आंखें बेकार है, और जिन लोगों को देखा उसी का जीवन। और ये हिरणिया धन्य है, धन्याश्व मूढ़ मत अपहरणी, ये मूढ़ कहलाने वाली धरणिया धन्य है। क्यों? मूढ़ किस लिए? ये भविष्य में क्या होगा ये नहीं जानती, अभी बहेलिया इसको मारने वाला है, बंसी बजा रहा है और ये तन्मय होकर के सुन रही हैं, और अभी वो मरेंगी, इसलिए मूढ़ कहा। किंतु ये मूढ़ हरणिया होने पर भी, विवेक नहीं होने पर भी कृष्ण की बंसी और कृष्ण का रूप दर्शन करके मत एकदम मतवारी हो गई, और कृष्ण से प्रणय की भीख मांगने के लिए निकट आ गई, आंखों में आंखें मिला रही हैं कृष्ण से, और उसका पति कृष्ण सार, कृष्ण सार माने क्या, कृष्ण ही जिनका सार है। जी भर करके देखो, डरने की कोई बात नहीं, इसलिए हिरणिया धन्य है, इनके पति भी अनुकूल मिले, समाज भी अनुकूल, इनको रोकने वाला कोई नहीं। और हम लोगों का क्या है, हम लोग घर से निकल नहीं सकते, कृष्ण को दर्शन नहीं कर सकते, हमारे पति यदि सुने तो घर से निकाल दें, मारे पीटे धमकाएं, इसे तो हिरणी जन्म हमारा हो जाता, और कृष्ण को प्रणय भरी नेत्रों से मैं खुले रूप में दर्शन कर देती, हमारा जीवन सार्थक हो जाता। इसलिए हिरणी धन्य है। आज विमान में चढ़ करके वो जो देवियां कृष्ण का ये देख रही हैं रासलीला, वो धन्य है, जो पतियों की गोद में कृष्ण का रूप और बंसी सुन करके मोहित होकर के गिर जाती हैं, और पति लोग उनको सहला करके उनको मूर्छित अवस्था से फिर ज्ञान लाते हैं, उनके प्रति द्वेष भावना नहीं करते, वो देवियां धन्य है। क्यों क्यों देवियां धन्य है? उनके पति अनुकूल हैं, उनका समाज अनुकूल है, स्वर्ग की स्त्रियों को इस पर कोई अंकुश, हमारे जैसा मनुष्य समाज जैसा नहीं है, इसलिए वो धन्य है जो कृष्ण का यह रूप देख रहे हैं। देवताओं को नहीं हुआ, देवताओं को नहीं, जैसे यज्ञ पत्नियों को जो मिला तो भाग्य, उनके पतियों को नहीं मिला, उसी प्रकार से इनको भी नहीं मिला, और हिरणों में भी पुरुष हिरण नहीं, हिरणिया, और उनके पति को पीछे रख दिया, वो अपने पति के अनुकूल कर रहे हैं इसलिए वो धन्य है, अन्यथा नहीं। यहाँ पर भी देवता लोग कृष्ण का वह रास नहीं देख सके, उन्होंने केवल कृष्ण को देखा, उनके रूप को देखा, बस इतना ही। और भी किस रूप में देखा, अपनी दृष्टि से जैसा देखते हैं, ने? रसिक शेखर के रूप में नहीं देखा, उनकी पत्नियों ने बल्कि देखा, इसलिए वहां पर उनका वर्णन किया गया। यदि हम मरे तो मर करके क्या बने, देवताओं की स्त्रियां बने, उनके पति लोग भी अनुकूल होते हैं, वो लोग रोकेंगे नहीं, मना नहीं करेंगे, इसलिए हम मर करके वही होना अच्छा है। फिर वो कह रही हैं, वह गायें धन्य हैं, उनके बछड़े धन्य हैं। गायें कृष्ण का यह बंसी ध्वनि सुन करके कान को खड़ा करके दोने के समान कृष्ण की बंसी की अमृत ध्वनि को अपान कर रही, हमें कहा ऐसा। और एक तक से निहार रही हैं, बछड़े दूध पीना भूल करके गले का दूध गले ही में रह गया, न नीचे लेते हैं न बाहर आते, गायों का घास भी कवल मुखी में रहा, न निकलती हैं न लेती हैं, ऐसी उनकी। और कहा हम कृष्ण का रूप नहीं निहार सकते, एक तो हमारा समस्त समाज हमारा विरोधी, हमारी सास कैसी जटिला जी, सब समय छेद देखती है, छिद्राणी, और ननदाई कैसी है, महाकुटिल, केवल दिन रात यही चिंता करती है कि कहाँ गई, क्या बोली, क्या किया, और अपनी मैया से अपने भैया से लगाना उसका काम, आज यहाँ गई ऐसे किया वैसे किया, दिन भर लगाना है उसका काम। और पति का नाम क्या, अभिमन्यु, माने अभिमान, अभिमान माने घमंड, महाक्रोधी, महाक्रोधी, थोड़ा सा भी सुन लेगा तो क्रोध करेगा। इसलिए एक तो इनके डर के मारे घर से निकलना पड़े, घर से निकले भी तो सखाओं के साथ में तो दिन भर गैया चराते, और आते ही यशोदा मैया गोदी में ले लेते, और फिर खाक पिका करके विश्राम मैया की गोदी में करते हैं, कैसे मिलन हो, कैसे मिलन। इसलिए मर करके हिरण होना अच्छा है, देविया होना अच्छा है, गाय और बछड़े होना अच्छा है, उसमें तो सुजोग मिल जाएगा। इसलिए हाथ ताश कर रहे हैं। नदियां धन्य है, यमुना नदी जिसे पानी पिए तो जाएंगे ना, तो यमुना जी क्या करेंगे, कृष्ण को दर्शन करने के लिए बंसी ध्वनि सुन करके उसमें नीचे का पानी ऊपर, ऊपर का पानी आ रहा नीचे, भ्रमर आ गया, और कमल के उपहार लेकर के कृष्ण के चरणों में कैसे दे रही हैं, ऐसे दे रही हैं, पहले तो उनका पानी बढ़ा, और पानी बढ़ने के साथ में कृष्ण के पैरों से होते हुए कमर होकर के यहां तक आया, वहां तक जब उनसे मिली तो कृष्ण निर्विकार रहे लकड़ी जैसे, मेरा तो उनको लज्जा गई, उतर करके कमलों में उपहार देने लगी। इस तरह से हमारा जन्म यदि नदी के रूप में हम हो करके आती तो कर्ण कृष्ण के चरण में उपहार देती, उनको तो कोई मना करने वाला है, कोई भी मना कर, अरे आकाश को देखो, बादल कृष्ण जहां जहां जाते वहां पर मेघ होता जाता है, उनका मित्र है ना, क्यों ना हो ऐसा, इसलिए उन पर धूप ना आ जाए, उनको कष्ट ना हो, इसलिए सब समय ठंडे ठंडे आंसू बहाता है, जो कृष्ण के ऊपर में गिरता है तो उनका शरीर कोमल एकदम शांत और ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है। इस तरह से वो बात कर रही हैं, और जब शाम हो जाती है तो प्रतीक्षा में रहती हैं जब कृष्ण गोचारण करके कब आएंगे, इसलिए आविशतश्च सायं, जब कृष्ण गौओं को चारण करके जब के नीचे आते हैं, गौओं का हम्बारा और कृष्ण की मधुर बंसी, और भूल आकाश में उड़ती है, उसको देख करके ब्रजवासी सब स्त्री पुरुष वृद्ध सभी आ जाते, ये लोग भी खड़ी रहती हैं। उस समय निर्गम्य तुरणम अबलापति भूर पुण्य, घर से बाहर कभी आती है देखते हैं कि धूल उड़ रही है कि नहीं, बंसी ध्वनि सुन हो रही है कि नहीं, गायें रंभा रही हैं कि नहीं, आकर के फिर घर में लौट जाती है, देखे अभी देरी है, फिर जाती हैं, फिर आती हैं, घर से बाहर हजारों बार आती हैं और पीछे जाती हैं। और जब देखिए आकाश में धूल आने लगी तब वो खड़ी हो जाती हैं बाहर, निर्गम्य निकल जाती हैं घर से निकल करके और वहां पर खड़ी हो जाती हैं। तूर्णम, तूर्ण में एकदम तत्क्षणा, अबला, अबला किसको कहा जाता है, जिसमें बल नहीं। क्यों कहा गया इन गोपियों को, गोपियां ये अबल हैं कि स्वयं ही शक्ति हैं ये, तो अबला इसलिए कहा गया दिन भर में विरह में तप्त थी और तप्त होने से इनका शरीर एकदम ऐसा है कोई बल नहीं कुछ नहीं, खड़ी नहीं रह पाती हैं और इतनी बुद्धि चंचल हो गई है कब कृष्ण आएंगे, दर्शन करने के पहले ही एकदम आविष्ट हो गई और क्या करें नहीं करें कुछ कर नहीं पाती हैं। इस तरह से अबला पथिभूर पुण्य, ओह बड़ी पुण्यवान वाली है, संसार में इन्हीं का जन्म सार्थक, हम लोगों के लिए ऐसा संभव नहीं। और इस तरह से गोपियां, इतने में कृष्ण आए, उनको देखा, देख करके सस्मित मुखम प्रसन्न हो जाती, कृष्ण का विरह एक मिनट उनके लिए एक युग के समान हो जाता है, युगायतं निमिषेण चक्षुषा प्रपृशा। हम लोग केवल सुन रहे हैं, थोड़ी सी भी अनुभूति नहीं, कृष्ण के लिए हमें एक मिनट क्या, कभी भी दिन रात में ऐसा होता नहीं, अरे गुरु के लिए नहीं होता है, वैष्णव के लिए नहीं होता है, जो साक्षात हम सभी मिल रहे हैं, देखते हैं सुनते हैं, जो हमारा परिवर्तन कर रहे हैं, हरि कथा सुना रहे हैं, उनके लिए ही नहीं हो रहा है तो भगवान के लिए क्या होगा, पहले तो गुरु के लिए होगा ना। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कहते हैं याद है, सुन्यायतं महागोष्ठम ये रूप गोस्वामी के, रूप गोस्वामी के जाने पर विरह में आतुर हो गए, अब मुझे गिरिराज जी के पास में रहने से लाभ क्या, राधा कुंड और श्याम कुंड व्याघ का मुख जैसा दिख रहे हैं, मुझे वो निगल जाएंगे, गिरिराज अजगर के समान अब मुझे दिखते हैं, हमारे जीवातु मने प्राण हैं रूप गोस्वामी, आज रूप गोस्वामी नहीं रहे, हमें छोड़ करके चले गए, विरह में आकुल हो गए। तो गुरु के लिए पहले होगा ना, गुरु को नहीं हुआ तो भगवान के लिए अभी क्या होगा, इनका भगवान के प्रति है, हम लोगों का गुरु वैष्णव के प्रति हो। दुखों में सबसे बड़ा दुख क्या है, हम लोग को किसी वैष्णव के लिए विरह होता है, संभव है, जिसको होता है उसका होता है, विरह कहाँ, विरह होना चाहिए ना, जो इतना शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कर रहे हैं, वो माता पिता के लिए भी तो विरह होना चाहिए, पहले माता पिता के प्रति आएगा और इसके बाद में तब वो गुरु की कृपा को अनुभव करके गुरु के लिए होगा, और गुरु कृपा क्या करता है, जो कृष्ण से संबंध करा देता है, तब तो कृष्ण के लिए होगा। जिसकी विरह की अनुभूति तनिक नहीं है, मैं समझता हूं उसका भजन आरंभ नहीं हुआ, इसलिए गुरु के प्रति विरह, पहले गुरु के प्रति श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति हो, तब तो गुरु के प्रति गुरु को महिमा समझेंगे, तो गुरु के लिए प्राण दे देंगे, आज जिसके ऐसी नहीं हुई, गुरु को महिमा ही नहीं समझता है, उनका तकिया केवल देखता है या पॉकेट देखता है। हम लोग के गुरु जी के समय में भी ऐसे थे जो सब समय पॉकेट पर या तकिया के अंदर में हाथ रहता था, तो वैसे ही उनका जीवन भी नष्ट हो गया। हम लोगों ने गुरु जी से ये सब चीजें नहीं देखी, गुरु जी अप्रकट हुए तो हम लोग जो तीन चार आदमी थे हम लोगों ने एक पैसा भी नहीं देखा, कुछ नहीं। और जिन लोगों ने ये सब लिया तो वो रसातल को चले गए। गुरु जी से हमसे ये महाधन कृष्ण भक्ति लेना है तो गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा हो, विरह हो, भक्तों के प्रति हो, तब तो भगवान के प्रति आएगी। इस जिसने गुरु से कुछ लिया ही नहीं तो उसको क्या विरह होगा? भगवान को जिसने समझा नहीं उनके लिए क्या विरह होगा? नैनंगल और दासु धारिया वो कहेगा। इसलिए ये कहते हैं गोपियों का विरह, वैष्णवों का विरह, भक्तों का विरह, अनुभूति करना ही भजन है। इसलिए साधक अवस्था में विप्रलम्ब भाव होना चाहिए, बिना विप्रलम्ब के ये भजन नहीं होगा। हाँ, भक्ति नहीं हो रही है, कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे हैं, महाप्रभु जी की कृपा नहीं हो रही है, पतिताओं नित्यानंद पुरी जी की कृपा नहीं, उनके लिए हृदय में कुछ दुख नहीं हमारे अंदर। पैसे के लिए हम जितना चेष्टा करते हैं उनकी कृपा को लाभ करने के लिए नहीं करते। ये विरक्त अनुभूति होना ही ये भजन। पश्यन्ति सस्मुद्मुखम् तदयावलोकनम्। इसके बाद में वो चुप हो गई। इधर में हुआ क्या? एवं प्रभासमानासु स्त्रीसु जोगेश्वरो हरि शत्रुम हन्तुम मनश्चक्रे भगवान भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे परीक्षित महाराज, भरत वर्ष अवतम भरत वंश में जोगेश्वर हरि, जो हरि जोगेश्वर हैं। हरि किस लिए? हरि हर की मना, जो सबके चित्त को आकृष्ट करने वाले परम मनोहर रूप वाले जो कृष्ण हरि हैं, सबका चित्त हरण करने वाले, किंतु साथ साथ में जोगेश्वर भी हैं। जोगेश्वर इसलिए किस लिए यहाँ पर बतलाया? दो रूपों में। एक तो इन स्त्रियों की बात जो वहां हो रही थी ऊपर में दूर में, और इधर चारों से लड़ने में व्यस्त थे, किंतु उनकी बातों को भी सुना। इस प्रभासमानासु स्त्रीसु, स्त्रियों की बात को उन्होंने सुन लिया। संभव पर नहीं था, नगाड़े बज रहे हैं, ध्वनि चल रही है, कोई कंस को के चरों का जय दे, चारों की जय हो, और कृष्ण की तरफ से जय देने वाला कोई नहीं है। बहुत से लोग कोई बोल नहीं सकते, बोल सकते हैं नंद बाबा बोलेंगे जो कृष्ण की जय हो, ना वसुदेव जी बोलेंगे, और वो लोग देख रहे हैं कि कंस के ये सब मिल करके कृष्ण को मारने जा रहे हैं, बड़े डरे हुए हैं, कहीं ये सभी लोग मिल करके मारेंगे, इसलिए जय तो नहीं दे सकते। और उधर कंस के जितने चर हैं, कृष्ण के भाई हैं, वो सब उनको शाबाशी दे रहे हैं, अब लिया, अब मारा, अब ऐसा हुआ। और उसमें कृष्ण हो हल्ले में से भी उनके भावों को, जो ये कह रही थी गोपियों के भावों को, उन्होंने श्रवण किया। सुन करके उन्होंने क्या कहा? शत्रु हंतम मनश्चक्र, शत्रु को मारने की चेष्टा उन्होंने मन में निश्चित किया, जो अब मारना चाहिए, अब खिलाना नहीं चाहिए, अब तक तो खिलवाड़ किया। जोगेश्वर है ना, इच्छा करने से ही उसको मार सकते हैं, किंतु नर लीलावत वो ये सब जो लीलाएं कर रहे हैं इसलिए इतनी देरी लग रही है। वसुदेव जी और देवकी रो रही हैं, कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि अब मारा इन लोगों ने कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण के स्वरूप को नहीं जानते थे ये लोग। वहां पर जितने बैठने वाले थे उसमें अक्रूर, उद्धव ये सब तो जानते थे, हो सकता है कि नारद जी भी किसी बहाने से जरूर आ गए हों देखने के लिए। वो सबके हुए कहीं कोने से इधर उधर से देख रहे हैं, कृष्ण मार सकते हैं, किंतु उन्होंने नहीं कहा। किंतु वसुदेव देवकी जी कभी मधुर रस के उपासक, कभी ऐश्वर्य रस के उपासक, अब इस समय में उनको बच्चे के रूप में देख रही हैं, कहां ये बच्चा, कहां ये दानव, जरूर इनको मारें, बड़ी डरी हुई हैं। सभाया श्री स्त्री गृह श्रुत्वा पुत्र स्नेह सुचातुरौ इतरा अन्न तपतो अन्न तप्यतां पुत्र पुत्रयो अबुधौ बलम। पुत्र के बल को, जो ये भगवान है और षड्यस्वजों में से एक बल भी है, बड़े बलवान कृष्ण हैं, षड्यस्वजशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अबुधम उनको समझ नहीं सकी। क्यों नहीं समझ सकी? मायाबद्ध जीव हैं तो मुक्त जीव को तो सब कुछ जानना चाहिए, जैसे नारद जी जान रहे हैं, जैसे अक्रूर जी जान रहे हैं, वो भी भक्त थे, वो जानते थे ये मारेगा, मारे कंस नहीं मार सकता। वो जब नंदगांव से ले आ रहे हैं तभी कह रहे हैं कंस ऐसा कर रहा है, दुर्बुद्धि मूर्ख, एक विषैले सर्प को गले में लगाने जा रहा है। कहा वो नंदगांव में बेचारा चुपचाप सांप सोया हुआ है, चुपचाप सोया हुआ है, ऐसा भी नहीं कर रहा, चुपचाप सोया है, और ये उसको लकड़ी से उसका कर उत्तेजित कर और उसे पकड़ करके अपने गले में लगाना जा रहा है, ऐसा ये मूर्ख। लकड़ी क्या है? अक्रूरी लकड़ी, अक्रू के द्वारा उत्तेजित किया और बुलवाया, और इस रंगस्थली में अपने गले में लगाना माने उनको बुलाना यहां पर, और एकदम निकट में बुला करके चारण मुष्टिक से उनका युद्ध करा रहा है, किंतु ये नहीं जाता कि एक क्षण में वो सांप क्या करेगा, उछल कर ऐसे करके उसे पकड़ करके गिरा देगा, उसको पता नहीं। ये नारद जी जान रहे हैं कि नहीं? उद्धव भी जान रहे हैं, अक्रूर जी जान रहे हैं, ये सब लोग जान रहे हैं। जान कौन नहीं रहा? नंद बाबा, यशोदा और ये पुर की स्त्रियां, पुर के जितने लोग हैं ये कुछ नहीं जान रहे हैं, बस देव देव की नंद बाबा ये कोई नहीं, और उनके साथ में सखा भी गए थे, मधुमंगल सुबल इत्यादि भी गए थे, वो भी डरे हुए हैं, तब उनको भी साहस था, दीर्घ विष्णु रूप को दिखलाया था, उन्होंने कहा जे कृष्ण तुम मारने के लिए तो जा रहे हो, कैसे मारोगे छोटे से बच्चे उसको, अरे मैं मार दूंगा तो कैसे दिखलाओ, तो कैसे मारेगा, तो उन्होंने विराट रूप धारण किया और शंख चक्र गदा पकड़ लिया, देखो ऐसे मारूंगा, हाँ अच्छा अच्छा सखा भी इस रूप का हटा दो, ठीक है तुम मार लोगे हम बाबों को, तो उनको नहीं संदेह था। तो इस तरह से सभाओं में स्त्रियों की बातों को सुन करके पुत्र स्नेह सुचातुर अत्यंत आतुर, आतुर माने किसको कहते हैं, भय से बिहवल, स्त्रियों की बातों को सभा में सुन करके, क्योंकि निकट में बैठे हैं, सुन करके वसुदेव और देवकी के स्नेह से बड़ी दुखी हो गए। हाँ हमारे पुत्र को ये मारेंगे, मारने जा रहे हैं, देखो तो ये मारने का उपक्रम कर रहे हैं, ये हुआ जोग माया के कारण। नारद जी हैं, अक्रूर जी हैं, उद्धव जी हैं, इनकी बुद्धि में मर्यादा कुछ है, ये भी मुक्त हैं, किंतु मर्यादा पूर्ण बुद्धि होने से उनमें भगवत्ता की बुद्धि है, इसलिए प्रेम नहीं उतना जितना कि देवकी वसुदेव में और नंद बाबा में है और सखाओं में। इस लीला को देख करके भी वो देख रहे हैं कि ये कृष्ण को क्या मारेंगे, कृष्ण अभी मारेंगे, ये ऐश्वर्य बुद्धि हुई, इन लोगों को कोई दुख कष्ट नहीं है, किंतु जोग माया ने जिनके इसको ढक दिया है उनकी ऐश्वर्य शक्ति को, वो साधारण रूप में कृष्ण को दुर्बल छोटा सा बच्चा समझ रहे हैं और ये लोग उसे मारेंगे ऐसा समझ रहे हैं, इसलिए बड़े दुखी हैं स्त्रियों की बात को सुनकर। इतरो अन्न तप्त, अत्यंत तप्त हो गए, कैसे? दुख से तप गए, बड़े दुखी हुए, क्योंकि पुत्र के बलों को नहीं जानते थे, इसलिए बड़े दुखी हो गए। तई निजुद्ध विधि भी विविध वैद्य अत्युत्तरौ युजधाते यथा अन्नो अन्यम तथैव बलम मुष्टिको। इधर में ये बातें भी हो रही हैं, इनकी दशाएं भी, और जितने जैसे लोग हैं उनकी दशा ऐसी हो रही है। हम लोगों को अभी भगवान का दर्शन नहीं, कृष्ण की लीलाएं मथुरा में अभी भी चल रही हैं, वृंदावन में भी चल रही हैं, द्वारका में भी चल रही हैं, हम लोग देख नहीं पाते, हमारे अनर्थ हैं, इसलिए हम माया के अधीन हैं। वो श्रीमद् भागवत का श्लोक, भयं द्वितीयाद अभिनिवेशतस्या, हम लोगों को माया ने पकड़ा है, इसलिए हम लोग माया के अधीन हो करके इस संसार को ही सत्य, अपना और शरीर को मैं समझ रहे हैं, और दुखी और सुखी हो रहे हैं। और उन लोगों को भगवान की लीला का या प्रेम का आस्वादन होता है योग माया के माध्यम से, योग माया उनकी उस बुद्धि को, ऐश्वर्यमय बुद्धि को ढक कर अपना पुत्र, अपना सखा, अपना प्रियतम इस रूप में करते हैं। योग माया महामाया एक ही है, दो नहीं है। जब संसारी लोगों को, जीवों को वो स्पर्श करती है तो उसको कहते हैं महामाया, और जब भक्तों के पास में जाती है तो उसको कहते हैं योग माया। एक ही माया शक्ति की, पराशक्ति की ये दो वृत्तियां हैं। यह जो दूसरी वृत्ति है माया, महामाया, उसकी दो वृत्ति फिर है। एक जीव के स्वरूप को ढककर ढक लेती है, और दूसरी वृत्ति बहुत दूर से फेंक देती है। एक विक्षेपात्मिका, एक अवरणात्मिका, इसलिए देख नहीं पाती। ये भजन के प्रभाव से दूर होगा ऐसे नहीं, तो हम जैसे भजन कर रहे हैं भाई वैसे नहीं होगा। ऐकांतिक जैसे रूप गोस्वामी इत्यादि ने भजन किया है, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर तक के जितने भी पूर्वाचार्य हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हैं, जीव गोस्वामी हैं, आज कहीं से पेड़ा मिल जाए और पेड़ा थोड़ा सा खा ले, अच्छा ठीक है तुमको पेड़ा खिलाते हैं, जमुना का कीचड़ उठाया कजे खाओ और मुख में भर दिया, खाओ, निकल गए। ऐसे करते करते अंधे हो गए। ये इन आंखों से यदि कृष्ण का दर्शन, ब्रज का दर्शन नहीं होता, अंधा होना ही अच्छा है। और रात में कोई मार्ग नहीं तो भी मायापुर में पहुंच जाते हैं। बाढ़ के समय में केवल बबुल के कांटों से घिरा हुआ, उस समय कोई पथ नहीं, और वहां पर पहुंचे। प्रभुपाद ने पूछे, प्रभु जी कैसे आए, कैसे आया कोई ऐसा कोई बालक हमको पकड़ करके यहां ले आए, उनको आंख की जरूरत क्या है, क्या जरूरत, भागवत हो रहा है, कोई विद्वान आदमी पढ़ रहे हैं। और कहा जी गोसाई जी या क्या अर्थानर्थ कर रहे हो, जरा शुद्ध अर्थ कहो ना। कहिए आप थोड़ा सा उन्होंने बतला दिया। तो विद्या पढ़ने की क्या जरूरत है, इस अनुसार विसर्ग से नहीं होगा, वैष्णव की सेवा, गुरु की सेवा, भगवान की सेवा और भजन से होगा। भाई वैसा भजन करने की चेष्टा करो जो उनका आदेश ही नहीं मालूम पालन कर पाता है, तो वो क्या करेगा। अभी इतनी निष्ठा नहीं है, रुचि केवल दुख से बिल बिला रहे, क्या भजन करेगा। इसलिए ये कहते हैं योग माया, जहां तुम भगवान का भजन करना आरंभ किया, योग माया से प्रार्थना करेगा, योग माया आकर के हमारी सहायता करे। ये योग माया कौन है, पूर्णिमा जी उनका प्रणाम मंत्र याद है, अभी बतला रहे राधेश केली प्रभुता विनोद विन्यास विज्ञान ब्रजबंदितांग्रिं, क्या कृपालुताद्या विश्ववंद्या श्री पौर्णमासीं शीर्षानमा, उनको प्रणाम करके ये मंत्र उनसे कृपा प्रार्थना करें। यमुना जी से प्रार्थना करो, गिरिराज गोवर्धन से प्रार्थना करो, कृष्ण कुंड और राधा कुंड ये सब सब साक्षात यमुना जी, ये यमुना जी विशाखा जी हैं, गिरिराज गोवर्धन स्वयं कृष्ण के स्वरूप और लीलाओं का साक्षात करने वाले परम दयालु हैं, महावदान्य हैं। राधा कुंड और श्याम कुंड साक्षात राधा कुंड है, ये कृष्ण प्रेम को देने वाले हैं। वृंदा देवी जी, योग माया जी, ये सब गोपेश्वर महादेव, वृंदावनावनी पते जय सोम सोम मौले सनक सनंदन सनातन नारद गोपेश्वर बज विलास युगांग्री पद में प्रेम प्रयच्छ निरुपा। उनसे प्रार्थना करने से तब तो जोग माया कृपा करेंगी, जोग माया मोरे कुल माया, कुल देवी ना, हमारी कुल देवी कौन है, तुम्हारा कुल क्या है, कुल क्या है पहले कुल देखो, नहीं तो जोग माया हमारे कुल की देवी नहीं होंगी। वो तो है, किंतु हमारा कुल क्या है, गोपियों का कुल जो है वही हमारा कुल, तब तो जोग माया हमारे कुल में नंदगांव में आकर के हमारी सब सहायता करेगी। और इस जन्म के अनुसार में कुल देवी नहीं है, अभी कुल हमारा गोपियों का कुल या कृष्ण का कुल, अच्युत कुल गोत्र, और गोपियों का कुल और गोत्र ही हम लोगों का कुल है, यदि होगा महाप्रभु जी का, चैतन्य महाप्रभु जी का कुल और गोत्र ही हमारा गोत्र है। किंतु यहाँ पर जोग माया का जब आता है तो कृष्ण का होना पड़ेगा, गोपियों का होना पड़ेगा, वो हमारी कुल देवता है, वो कृपा करें हम पर, तब तो हम लोग समझेंगे कुछ। भजन में दिन रात यही चिंतन करना होगा, ऐसे अर्चन से, सुखा अर्चन से नहीं होगा, सुखे कृष्ण नाम से नहीं होगा। अब वैष्णव के सिर पर बैठ करके उनका पॉकेट केवल देखते हैं, उसे भी नहीं होगा। तन मन वचन आत्मा से भी समस्त इंद्रियों के द्वारा पहले वैष्णव और गुरु की सेवा हो, इसके बाद में कृष्ण और उनके परिकरों की हो। अन्य अभिलाषिता शून्यम, ये केवल कृष्ण के लिए नहीं कहा गया, उसमें कृष्ण मैंने क्या, उनका सारा परिकर वैष्णव गुरु सबके प्रति लगता है। इसलिए ऐसा भजन करो तुम लोग और इन चीजों को उपलब्धि करो, फिर क्या हुआ अब अगले दिन बतलाए। वंशा कल्प तरुभ्य कृपा सिंधु, अरे गोपाल भट्ट जी दक्षिण प्रदेश में कहां पर जन्म हुआ था, श्रीरंगम, महाप्रभु जी चातुर्मास में वहां पर ठहरे, उनकी उन्होंने प्राण से सेवा की, तन मन प्राण इंद्रिय सब प्रकार से सेवा की। श्री संप्रदाय में दीक्षित वैष्णव उनके पिताजी चाचाजी, ये पिताजी तीन भाई और ये तीनों ही श्री संप्रदाय में दीक्षित थे। महाप्रभु जी ने उनको बदल करके राधा कृष्ण जुगल की सेवा में दी, मुरारी गुप्त को नहीं पलट सके, अनुपम जी को नहीं बदले, इनको बदल दिया। और बदल कर क्यों, इसका कारण भी है, पहले बतलाया है। और इनको उन्होंने राधा कृष्ण जुगल का ऐसा किया कि घर छोड़ करके माता पिता की सेवा किए, माता पिता चले जाने के बाद में भारतवर्ष के तीर्थों को घूमते हुए गोमती के किनारे गए और वहां से शालग्राम शिला एक इतना बड़ा उनको मिला लंबा सा, वो लेकर के ब्रज में आए और सेवा करते करते उत्कंठा हुई, इनको आभूषण पहनाएंगे और झूले पर झुलाएंगे, साथ ही साथ में रात में ही उन्होंने वेश बदल करके वो शालग्राम सेवा ही आराधना। उनमें तीनों का, गोविंद गोपीनाथ और मोहन तीनों का उसमें रूप चला है। कुछ लोग कहते हैं कि ये महाप्रभु जी का ही रूप है, ये इस रूप में है वो बतलाते हैं। तो वो राधा रमण जी हुए और उन्होंने सनातन गोस्वामी की इच्छा अनुसार, महाप्रभु की इच्छा अनुसार में हमारी वैष्णव सात ग्रंथ बनाया, हरि भक्ति विलास, और आश्रम स्थित व्यवहार के लिए सत्क्रिया सार दीपिका और संस्कार दीपिका का निर्माण किया और भी कुछ ग्रहण किया। संदर्भ की जितनी कारिका हुई वो सब इन्होंने ला करके उसके जितने उदाहरण हैं, श्लोक हैं, सब उन्होंने संग्रह किए। सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास को लिख करके उनके द्वारा पुष्ट करा करके फिर अपनी टीका भी लिखी। इसलिए हमारे छह गोस्वामियों में भी ये अन्यतम है, जिन जिनकी इच्छा से, जिनकी सेवा वासना से सालग्राम भी रूप बदल करके और राधा रमण जी हो गए। उनके साथ में बातचीत करते थे, उनकी सेवा को ग्रहण करते थे, बोलते जी हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, जैसे सनातन गोस्वामी के, अरे नमक तो दे, मिश्री और मक्खन तू मत दे, मैं इसकी व्यवस्था कर लूंगा, तू नमक तो ला करके दे, हमको मथुरा से लाया और दे नहीं रहा, हमारी इच्छा में हो रही है कुंडल पहनू। उन्होंने देखा जी कान में छेद है कि नहीं, जयपुर वाली महिषी ने देखा जी इनके कान में छेद है और साथ ही साथ में उनको कुंडल पहना। ये मूर्तियां हैं, ये साक्षात भगवान, इनको समझना चाहिए। हम लोग अभी भगवान को भगवान नहीं समझते। जयपुर में हम जाएंगे देखेंगे, जगन्नाथ जी को जाएंगे देखेंगे, पुरी में कोई भाव उद्रेक होता है, ये हमारा अपराध का फल है, जो हमारा चित्त ऐसा नहीं हो रहा। तो आज यही तक रहे, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हमारे ऊपर में तैयार गौ प्रमाण महामंत्र पर।